केवल अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। 41 श्लोक संख्या 41। यहां तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती हैं, वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती हैं, अतः उनको किसी बात के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो दासी की दासियों के समान है, हम सर्वाधिक हद भाग्य हैं। 42। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पति द्वारा उपेक्षित होने तथा कृत द्युति के गोद भरी हुई देखकर सभी सौतों द्वेष से अधिकाधिक जलने लगी। श्लोक संख्या 43। द्वेष बढ़ जाने से रानियों की बुद्धि मारी गई, अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को ना सह सकने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष खिला दिया। श्लोक संख्या 44। अपनी सौतों द्वारा विष दिए जाने की घटना को ना जानती हुई रानी कृत द्युति ये सोचकर कि उसका पुत्र सो रहा है, घर में इधर उधर विचरती रही, उसे पता ना चल पाया कि वे मर चुका है। श्लोक संख्या 45। ये सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृत द्युति ने धाय को आज्ञा दी, हे सखी, मेरे पुत्र को यहां ले आओ। 46। जब धाय उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें उल्टी उलट गई हैं, इसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है, उसकी समस्त इंद्रियां ठप हो गई हैं, अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। ये देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, हाय मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। 47। अत्यंत विशुद्ध होकर वह धाय अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और आर्द स्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आ गई और जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो देखा कि वह सहसा मर चुका है। 48। परम शोक के कारण रानी के बाल तथा वस्त्र बिखर गए और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्लोक संख्या 49। हे राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से रोना सुनकर हरिवास के सभी स्त्री पुरुष आ गए, समान रूप से संताप होने के कारण वह भी रोने लगे। जिन रानियों के विष ने विष दिया था, वे भी अपने अपराध को भली भांति जानते हुए झूठ मूठ रोने का काम करने लगे। उसके बाद 51, 50 और 51। जब राजा चित्रकेतु ने सुना कि ना जाने कैसे उसका पुत्र मर गया है, तो वह प्रायः अंधा हो गया। पुत्र के प्रति आघात होने के कारण उसका विलाप जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया और रास्ते भर वह भूमि पर लगातार गिरता पड़ता तथा लुढ़कता हुआ उस बालक को देखने लगा। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से गिरा हुआ वह राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बालक तथा वस्त्र बिखर गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वह बोल नहीं पा रहा था। 52। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल और अपने एकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह भांति भांति से रोदन करने लगी। इसके रनिवास ने के समस्त वासियों, मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की वेदना बढ़ गई। 53। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। उसके आंसुओं से नेत्रों में लगा अंजन धुल गया और कुमकुम लेप से लेपित उसके स्तन भीग गए। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप कुर्री पक्षी के मधुर स्वर की तरह लग रहा। श्लोक संख्या 54। अरे विधाता, ये सृष्टिकर्ता तो निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य के मैं अनुभवहीन मूर्ख है। याद का श्लोक तो आज का श्लोक हम लोग उच्चारण करते हैं। समय कम है इसलिए हम लोग सीधा उच्चारण कर रहे हैं। शब्द नहीं बोल रहे, शब्दार्थ बाद में बोलेंगे। अहो विदादस्त्वम अतीव बालिशो, यस्तु आत्मसृष्टि अपरती रूपम यासे परेनु जीवति अपरस्य यामृति विप्रययश्चे त्वमसि ध्रुवः परा अहो विदादस्त्वम् अतीव बालिशो यस्तु आत्मसृष्टि अपरतिरूपमिहसे परेण जीवति परेण जीवति अपरस्य यामृति विपरयस्ते त्वमसि ध्रुवा परः अहो विदातस्त्वमतीव बालिशो यस्तु आत्मसृष्टि अपरतिरूपम् हि हसे परेनु जिह्वति अपरस्य यामृति विपरयश्च त्वमसि ध्रुव परा
दो पुरुष भक्त बोले और दो माताएं बोले बोले अहो ओ शोक में विधाता हे विधाता ईश्वर त्वम तुम अतीव अत्यंत बालिशः मूर्ख यह जो तू निस्संदेह आत्मसृष्टि अपनी स्वयं बनाई हुई सृष्टि के अप्रतिरूपम प्रतिकूल इह से कार्य करते तथा इच्छा करते हैं परे पिता या अन्य बड़ा नु निस्संदेह जीवति जीवित रहता है अपरस्य बाद में जन्म लेने वाले का या जो मृति ही मृत्यु बेपराय विपरीत चेत यदि त्वम तुम असि हो ध्रुवम निसंदेह परह बैरी शत्रु अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अरे विधाता हे सृष्टिकर्ता तो निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन मूर्ख है क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपने सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है तो निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और निर्दय है। तात्पर्य जब बद जीव की पराजय होती है तो वह इसी प्रकार से विधाता को धिकारता है। कभी वह श्री भगवान पर कुटिल होने का दोषारोपण करता है क्योंकि कुछ व्यक्ति सुखी हैं और कुछ नहीं। यहां पर रानी परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष देती है। सृष्टि के नियमानुसार पिता को पहले मरना चाहिए तब पुत्र को। यदि परमेश्वर अपने सनक के इन नियमों को बदल देता है तो उसे दयालु नहीं माना जा सकता वरन उसे मनुष्यों का शत्रु मानना चाहिए। वास्तव में विधाता नहीं वरन बद जीव ही अनुभवहीन मूर्ख है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि सकाम कर्म के नियम कितने सूक्ष्म हैं। वह इनको जाने बिना अज्ञानतावश भगवान की आलोचना करता है। तो ये महाराज चित्रकेतु की कथा चल रही है और इस अध्याय में ये बताया जा रहा है, इन श्लोकों में बताया जा रहा है कि इस तरह से महाराज चित्रकेतु का एक ही पुत्र था जो बहुत ही प्रयत्न से और अंगिरा मुनि की कृपा से जन्म हुआ था। 1 करोड़ रानियां थी, महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। और जो बच्चा था इसका नाम ही पड़ा था हर्ष शोक। तो बहुत हर्ष दिया, बहुत आनंद दिया, ब्राह्मणों को दान दिया महाराज चित्रकेतु ने, गायों का दान दिया, 60 करोड़ गाय दान में दी महाराज चित्रकेतु ने। कि इतने हर्षित हो गए महाराज चित्रकेतु, इतने प्रसन्न हो गए कि उनका लड़का हुआ है, उन्होंने 60 करोड़ गाय दान में दी। सोच सकता है कोई 60 करोड़ तो भारत में ही नहीं है,
भारत में 60 करोड़ गाय नहीं है, या 7 या 8 करोड़ है बस, वो भी हर साल गाय कट रही है, हर प्रत्येक दिन कट रही है गाय। तो महाराज क्षेत्र के तो इतने ज्यादा यशस्वी और वैभवशाली थे और समस्त प्रकार का ऐश्वर्य उनके पास था, लेकिन क्या नहीं था, गत संतान नहीं थी। और बहुत प्रयत्न से अंगिरा मुनि की कृपा से संतान हुई थी, लेकिन आज क्या हुआ है, आज ये हुआ कि अन्य पत्नियों ने द्वेष के कारण विष मिला के दे दिया किसको, हर्ष शोक को, और वो बेचारा मर गया। कृत द्युति जो पहली पत्नी थी महाराज चित्रकेतु की, उनके गर्भ से हर्ष शोक का जन्म हुआ था। तो अन्य पत्नियां बहुत द्वेष कर रही थी कि अब राजा का सारा ध्यान जो है कृत द्युति के ऊपर जा रहा है, हमें तो पूछते ही नहीं। अब द्वेष बढ़ गया, इतना जहर मिलाकर दे दिया खाने में या पीने में, हो गया समाप्त। तो इस प्रकार अब कृत द्युति जो है वो भी अब विधाता को यानी भगवान को दोष दे रही है कि आप ही इसके कारण है। ब्रह्मा जी कह भी रहे हैं ब्रह्म संहिता में, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण तो भगवान ही है, सृष्टि उन्होंने बनाई है, जीवात्मा को शरीर भी उन्होंने दिया है, तो इसलिए जीवात्मा जो कर्म करते हैं उसका भी जो है उसके लिए भी जिम्मेदार है भगवान, उसके लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं, हे सृष्टिकर्ता तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवी मूर्ख है। मूर्ख बोल दिया भगवान को कि आप मूर्ख हो, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने कैसे दी और इस तरह से अपने सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करते करने पर ही तुला है तो निश्चय ही समझ जीवात्मा का शत्रु है और निर्दय है। तो दोषारोपण लगाया जाता है भगवान के ऊपर जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है कार्य। हम गर्मी चाहते नहीं, सर्दी चाहते हैं, बरसात चाहते हैं, बरसात होती नहीं है, अकाल पड़ जाता है, भगवान को दोष देते हैं, है कि नहीं। एक विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई करता है, एग्जाम में फेल हो जाता है, तो वो दोष किसको देता है, भगवान को देता है, है कि नहीं। यानी कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो कई लोग युद्ध में गए और वापस नहीं आए, तो इस तरह से कई लोग नास्तिक बन गए, कई लोग नास्तिक बन गए। हमने भगवान ने प्रार्थना भी की थी, उन्होंने जाके चर्च में प्रार्थना भी की थी, लेकिन वो लोग वापस जब नहीं आए, युद्ध में मारे गए, तो वो सब नास्तिक बन गए। तो इस तरह से दोषारोपण किया जाता है, ये सुनामी जो हो रही है, अकाल जो आ रहा है, बाढ़ जो आ रही है, किस कारण से ये हो रहा है उस पर चिंता नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है इसलिए हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो आपके माने ना माने से क्या फर्क पड़ने वाला है, मत मानो। अब सड़क पर जा रहे हो, स्टॉप लाइट पर नहीं रुकते हैं, तो समस्या आपकी है। हम नहीं मानते ट्रैफिक लॉस को, क्योंकि ये जो ट्रैफिक पुलिस उसने बहुत ज्यादा चलान कर दिया है कि नहीं, 1000 रुपये मुझसे ले लिए बेमतलब के, हम नहीं फॉलो करेंगे ट्रैफिक लॉस को, छोड़ देंगे उसको, फिर भी नहीं छोड़ा जाएगा उसको। अब मानो या ना मानो, अगर आप ब्रेक करोगे लॉस को तो तिहाड़ में बैठो, फिर जाओ, ऐसे नहीं सुधरोगे तो वैसे सुधारा जाएगा। तो दो तरीके सुधारने के, बद जीव को दो तरीके से सुधारा जा सकता है, एक तो 84 लाख योनियों में भींच के, जैन धर्म में भक्तिराव ठाकुर कहते हैं हीटिंग एंड हैमरिंग प्रोसेस के द्वारा, इसको कहते हैं हीटिंग एंड हैमरिंग प्रोसेस। जय राधिका रमन की, जय जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा महारानी की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो सोने को शुद्ध करने के लिए हथौड़े से उसको पीटा जाता है और उसको गर्म किया जाता है, इसी तरह से बद्ध जीव को शुद्ध करने के लिए, उसकी चेतना को शुद्ध करने के लिए उसको खूब पीटा जाता है 84 लाख योनियों में। और 84 लाख योनियों में जब खूब धुलाई हो जाती है तब जाके उसको अकल आती है कि मैं कहां सड़ रहा हूं इस सृष्टि के अंदर भौतिक संसार। दूसरा तरीका है कि कोई भगवान की शरण ले ले, भक्त की शरण ले ले, गुरु की शरण ले ले, तो उस तरह से वह पवित्र होता है। तो इस प्रकार इस बात का हमें समझना है कि किस तरह से जो लोग हैं बद्ध जीवन जो हैं बद्ध अवस्था में भगवान को दोष देते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कर्म कितना जटिल है, कर्म को समझना इतना आसान नहीं है। भगवद्गीता के 4वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं घना कर्मणो गति ही, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम घना कर्मणो गति ही। यानी इंट्रिकेसी जो है कर्म के बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसको समझना आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। कौन किस कारण से जो है कष्ट पा रहा है या कौन किस कारण से सुखी हो रहा है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। सामान्य ज्ञान हो सकता है, जनरल प्रिंसिपल समझ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बताना कि इस समय ये कष्ट क्यों उठा रहा है ये बहुत मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम। ये जो कर्म का जो कानून है, लॉज है कर्म के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं इट्स वेरी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल है इसको समझना। तो इसलिए लेकिन भगवान के ऊपर दोष नहीं लगाया जा सकता है कि वो पक्षपात करते हैं या फिर अन्याय करते हैं। ये सब दोषारोपण होता है भगवान के ऊपर कि आप अन्याय कर रहे हैं, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और भी तो है लोग संसार में, मैं तो इतना मेहनत करता हूं, मैं तो हमेशा पुण्य कर्म करता हूं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। हम लोग सेमिनार भी करते रहते हैं इसके ऊपर, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं। आप इन्होंने अभी एक लॉ इंस्टीट्यूट में गए थे, ये लोग वहां पर भी ये सेशन किया था एक लॉ इंस्टीट्यूट में, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो कानून पढ़ाने वालों को भी कानून सीखना आवश्यक है, क्योंकि वो तो केवल संसार के कानून को जानते हैं लेकिन भगवान ने जो बनाया कानून उसको नहीं जानते हैं, भगवान के बनाए हुए नियम को नहीं जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं। उसी से संतुष्ट है, आईपीसी दिस में क्या लिखा है, आईपीसी सेक्शन दिस में क्या लिखा है ना, उसी में फंसे हुए हैं, आईसीबी 420 में क्या कहा गया है। लेकिन भगवान का जो बनाया गया कानून है वो बिल्कुल अटल है, वो पत्थर की लकीर है, उसमें किसी प्रकार का रिश्वत नहीं चलता है, उसमें किसी प्रकार का घूस नहीं चलता है। जो भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके जो वकील होते हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं, वो करप्ट नहीं होते हैं, उनको पोल्यूट नहीं किया जा सकता है, उनको दूषित नहीं किया जा सकता है, उनको खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन तरीका क्या है फिर उस कानून में, उस लॉ में अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उस लॉ में अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो क्या करना होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है लॉ में, लेकिन क्योंकि हम शरण ले लेते हैं भगवान की तो भगवान क्या करते हैं समस्त प्रकार के पापों से हमें छुटकारा दिला देते। प्रभुपाद जी कहते हैं एक टोकन तो देना ही पड़ता है, फिर भी वो तो देना पड़ेगा। ये हम सोचेंगे हम भक्ति में आ गए अब कुछ नहीं होगा, नियम भी तोड़ लें तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर ही रहे हैं ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो इतना सस्ता भी नहीं है ना, चीप भी नहीं है। तो यानी कि टोकन तो देना ही पड़ेगा और इस तरह से हम लोग पवित्र होंगे भगवान की शरण में अगर रहेंगे तो। लेकिन अगर भगवान की शरण नहीं लेंगे तो 84 लाख योनियों में ऐसी धुलाई होगी, ऐसी धुलाई होगी कि नानी भी याद नहीं आएगी, कोई याद नहीं आएगा, कोई नहीं याद आएगा, फिर ऐसे ऐसे मारा जाएगा, ऐसे पीटा जाएगा, बहुत बुरी हालत कर दी जाएगी। जनक महाराज हम सुन रहे थे कि जनक महाराज गए नरक लोक देखने के लिए, वैकुंठ जाने से पहले वो नरक लोक का दर्शन करना चाह रहे थे। तो वहां जब गए तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष को एक स्त्री के पुतले से लोहे का पुतला है और तप रहा है बिल्कुल वो स्त्री का पुतला, उससे आलिंगन कराया जा रहा है एक पुरुष को। पुरुष तो मतलब शरीर है उसके पास, पुतला नहीं है, और स्त्री का पुतला है और उससे आलिंगन कराया जा रहा है, और यमदूत पीछे से लोहे की सलाखें भी मार रहे हैं जलती हुई, और सामने जो है लोहे का पुतला है। जनक महाराज बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। जनक महाराज सोचे पड़ गए क्या करना है मुझे। तो यमराज जी ने पूछे, उन्होंने कहा यमराज जी आप बताएं ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस व्यक्ति को ऐसे क्यों तड़पाया जा रहा है कि इसने अवैध संबंध रखा था। यमराज जी ने अवैध संबंध रखा था इसलिए इसको तड़पाया जा रहा है, अगले जन्म में ये हिजड़ा बनेगा, उसके अगले जन्म में सुअर बनेगा। तो बहुत बुरी तरह से उसको पीटा जा रहा है। जनक महाराज चिंतित हो गए, उन्होंने कहा कि कोई और कोई तरीका नहीं, उपाय नहीं है कि जो नरक में बेचारे कष्ट पा रहे हैं जीव वो बच सके। बोलते हैं आप तो भगवान का नाम पवित्र नाम लेते ही हैं, शुद्ध नाम का उच्चारण करते हैं, अगर इन पापियों को 1% है ना एक नाम भी मिल जाए सुनने को, आपके मुख से निकला हुआ एक शुद्ध नाम भी इन पापियों को सुनने को मिल जाए, ये सब जो है नरक लोक से छुटकारा पा लेंगे। तो जनक महाराज ने एक बार राम नाम का उच्चारण किया, सारे पापी जो है नरक से मुक्त हो गए। तो ये तो करुणा होती है वैष्णवों की कि ऐसे नरक में भी जाके उनका उद्धार करना चाहते हैं। तो नहीं तो बहुत कठिन है 84 लाख योनियों से बचना, बहुत कठिन है। आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेते थे कौन थे आ पुनर्जन्म न विद्यते। नहीं तो ब्रह्मा जी के लोक से पाताल लोक तक जो है जन्म मृत्यु चल रहा है, बहुत विशेष साइकिल है ये, बहुत मुश्किल है साइकिल से बाहर निकलना, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो और क्या बता रहे हैं भगवदगीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञान नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती चांतवा जंतवा। इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है किसी के पाप के या किसी के पुण्य के जिम्मेदार नहीं है। अज्ञानता के कारण जो है जीव मोहित रहता है और उसकी उसका जो असली ज्ञान है वो ढक जाता है, और इस तरह से जो है कर्म बंधन में फंसा रहता है, कर्म बंधन से छुटकारा नहीं पाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए बाहर निकलना। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं यस्तु इंद्र गोपम अहुस्वकर्मा बंधान रूपम फलभाजनम आतनोति। फिर क्या है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजा। इंद्र से लेकर इंद्रगोप तक, इंद्रगोप एक कीड़ा है इंसेक्ट है, इंद्रगोप से लेकर इंद्र तक जो है सब कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, सब लोग कर्म बंधन में फंसे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं केवल भक्ति के द्वारा ही आप इस कर्म से छुटकारा पा सकते हैं। जहां तक भगवान की बात है, भगवान जो है समदर्शी हैं, भगवान जो है वो समदर्शी हैं। अब ये देखिए इसी तरह का प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने किया था भागवत में, जो सप्तम स्कंद आएगा अभी, अगला स्कंद जो आने वाला है उसमें परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किए थे, 6वें स्कंद के ऊपर आधारित, क्योंकि 6वें स्कंद में ऐसा लगता है, देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान ने इंद्र का साथ दिया और इंद्र को नारायण कवच प्राप्त हुआ था भगवान से, तो इस तरह से लगता है कि देवताओं का पक्ष लिया भगवान ने और वृत्तासुर का वध हो गया। हाँ? तो ऐसा लगता है कि देवताओं का साथ देते हैं, देवताओं के साइड से लड़ते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं भगवान। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे, भागवत भी कह रहा है ना? तो इंद्र के जो असुर हैं, इंद्र के जो शत्रु हैं, उस कारण से जो तीनों लोग व्याकुल हैं, उनका संहार करने के लिए या इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, तो ऐसा लगता ही है देखने में। इसलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, क्या बोल रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस तरह इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा? सबों के प्रति संभाव रखने वाले व्यक्ति किस तरह किसके प्रति पक्षपात करेगा और अन्य के प्रति शत्रु भाव रखेगा? तीन श्लोकों में प्रश्न किया इस प्रकार का। विष्णु साक्षात भगवान तथा समस्त आनंद के आगार हैं, अतः उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सधेगा? जब भगवान दिव्य हैं तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा और उनसे ईर्ष्या कैसी? हे सौभाग्यशाली तथा विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्ष है। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति सम है। तो ये देखिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, ये बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसे एक बद्ध जीव करता है, क्योंकि परीक्षित महाराज चाह रहे हैं कि सबका संशय दूर हो, किसी को संशय ना रह जाए, किसी को कहीं शक ना रह जाए भगवान के ऊपर कि भगवान पक्षपात भी करते हैं। ऐसा क्यों है? इसी कारण से सुखदेव गोस्वामी ने हिरण्यकश्यप के बारे में कथा सुनाई, किस तरह से भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो लेकिन उसी वंश में प्रहलाद महाराज हुए थे तो उनकी रक्षा भी की थी। अब प्रहलाद महाराज तो असुर कुल में जन्म लिए हैं, फिर प्रहलाद महाराज की रक्षा कैसे कर ली भगवान ने, है ना? तो इसलिए क्या पता चलता है, ये भजन दी तो माम भक्त्या मई तेतेषु चाप्य हम, है ना? कि मतलब भगवद्गीता भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि वास्तव में जो मेरा भजन कर रहा है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, उसकी मैं विशेष रूप से रक्षा करता हूं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्य न प्रियः, कि न अन्यथा मैं तो समान दृष्टि रखता हूं, किसी से मेरा द्वेष नहीं है, ना कोई मुझे बहुत प्रिय है, ना किसी से आसक्त नहीं हूं, लेकिन जो भक्त हैं, जो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, उनका मैं विशेष ध्यान रखता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि अहम्, यानी कि जो जितनी मात्रा में शरणागत होगा भगवान उतना उसका ख्याल रखेंगे। ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये जो है ये स्वाभाविक है। जैसे एक राजा जो है वो प्रजा की रक्षा करता है, लेकिन अपने परिवार जनों के प्रति राजा का प्रिय स्नेह होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन कोई कंपनी चला रहा है तो कंपनी में कई सारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उसके अपने परिवार के सदस्य जब आते हैं उससे मिलने तो उनके लिए विशेष स्नेह प्रस्तुत करता है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। तो जो भगवान के भक्त हैं, भक्त के लिए भगवान जो है वो हमेशा विशेष ध्यान देते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो समदर्शी हैं। जैसे भगवान की तुलना जो है वो बादलों से की गई है, बरसात से की गई है। जब बरसात होती है तो क्या होता है, वृक्ष जो है हरे भरे हो जाते हैं, उसमें से फूल निकलने लगते हैं, फिर फल निकलने लगते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले जब वृक्ष उगता है तो उसमें क्या होता है, अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद फिर उसमें से फूल निकलते हैं, जानते हैं ना, फिर उसमें से फल निकलते हैं। तो इस तरह से जो है, लेकिन देखा जाता है कि कई बार जो है कुछ फल खट्टे होते हैं, कुछ फल कड़वे होते हैं, कुछ फल मीठे होते हैं। अब इसका कौन जिम्मेदार है? बरसात तो सब जगह हो रही है, पहाड़ों में भी हो रही है, समुद्र में भी हो रही है, बरसात तो सड़क में भी हो रही है, बरसात तो सब पेड़ों में एक समान हो रही है, लेकिन क्या कारण है कि एक पेड़ से ही मीठे फल भी निकलते हैं और खट्टे फल भी निकलते हैं, कुछ फल फड़ भी जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जीव जो है अपने कर्म के लिए जिम्मेदार है, अपने कर्म के लिए प्रत्येक जीव जिम्मेदार है। एक श्लोक बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने कोट किया है भगवद्गीता के, भगवद्गीता में कोट किया है इस श्लोक में, 5वें अध्याय के 15वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया है कौस्तिकी उपनिषद से। क्या है श्लोक में? एषव हुई एव साधु कर्म कार्यति तम यम एभयो लोकेभ्यो उन्निश्यते, एष उ एवा साधु कर्म कार्यति यम अधो निश्यते। मतलब इसका मतलब क्या है, अब इस श्लोक को कोई पढ़ लेगा तो ऐसा ही लगेगा देखने में कि वास्तव में भगवान ही जिम्मेदार है सबके। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि भगवान जो है जीव को पुण्य कर्म में लगाते हैं ताकि वे ऊंचे लोगों की प्राप्ति करें। उसके अगले लाइन में लिखा है भगवान जो है जीव को पाप कार्य में लगाते हैं ताकि वो नरक जाए। अब इस श्लोक के अनुसार तो स्पष्ट होता है कि भगवान जिम्मेदार है हमारे पाप और पुण्य के लिए, तो हम लोग जिम्मेदार नहीं है, फिर हमें क्यों नरक भेजा जा रहा है या हमें क्यों स्वर्ग भेजा जा रहा है, हमें तो धाम भेजना चाहिए। क्या उत्तर है इसका, इस श्लोक के आधार पर क्या उत्तर होना चाहिए बताइए। हाँ जी, किसकी इच्छाओं के अनुसार? हाँ, जीव की जब प्रबल इच्छा होती है तो फिर भगवान जो है ऐसी व्यवस्था करते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो पाप या पुण्य कर सके। इसको कहते हैं अनुमंता उपद्रष्टा। भगवान भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में बता रहे हैं कर्म के 5 कारण होते हैं। पहला कारण कौन है? कर्ता। दूसरा कारण कौन है? चेष्टा। तीसरा कारण क्या है? इंद्रियां, सेंसेस, है ना, और फिर क्या है? और पहला कारण तो बताया है उसने, अधिष्ठानम, प्लेस ऑफ एक्शन, कर्म का स्थान। और पांचवा कारण क्या बताया है? स्वयं परमात्मा। तो ये 5 कर्म के कारण बताए गए हैं, उसमें जो परमात्मा है वो भी एक कारण है, लेकिन ये कारण का मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदार है। परमात्मा अनुमति देते हैं हमारी इच्छाओं को देखते हुए। हमारी प्रबल जब इच्छा होती है इंद्र तृप्ति करने की, माया में लिप्त रहने की, तो भगवान हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि जीव का और भगवान का संबंध जो है वो प्रेम के आधार पर है। भक्ति जो है वो फोर्स से नहीं होती है। आप किसी की गर्दन को पकड़ के बोले इस गुलाम वाला आपको जब करना ही पड़ेगा, नहीं तो आई विल शूट यू, आप कर भी लेगा एक दो दिन बेचारा डर के, लेकिन धीरे धीरे वो छोड़ देगा। जैसे भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर के समय में जब कई भक्तों ने इस बात का विरोध किया कि एक जो भक्त है इनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो सुबह से रात तक जप ही करते थे, तो भक्तों ने कहा ये प्रचार में नहीं जाते हैं और कोई सेवा नहीं करते हैं, पूरे दिन जप करते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने उस समय पेपर में डलवाया, न्यूज़पेपर्स में डलवाया, शहर के जितने बड़े बड़े अखबार थे सब जगह अखबार में डलवाया कि फ्री अकोमोडेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग सब फ्री है, प्रसाद भी फ्री होगा, केवल महामंत्र का जप करना होगा रोज। और कई वहां पे एप्लीकेशन आए, बहुत सारे लोग आए मठ में रहने के लिए, और बहुत काफी तादाद में लोग आए, और एक एक करके सब छट गए। एक दो दिन रहे सब लोग, सब गायब हो गए, क्योंकि प्रसाद लेना और रहना तो ठीक है, लेकिन जब कौन करेगा पूरे दिन। तो फिर भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर ने बोला देखो ये शिष्य कितना दुर्लभ है, ये हरिनाम लेता है सुबह से शाम तक, ये सबके बस का नहीं है। तो इससे पता चलता है कि भक्त जो है हरिनाम इसलिए नहीं ले रहे कि प्रसाद और रहने की व्यवस्था हो रही है, इस वजह से सोलह माला का जप कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि हजार जन्म के लिए कोई अगर वासुदेव श्री कृष्ण यानी उनके विग्रह की सेवा कर लेता है, पर थाउजेंड्स ऑफ बर्थ उसके मुख में जाकर जो है हरिनाम वास करता है, इतना आसान नहीं है, वह हरिनाम हमेशा ले रहा है कोई अगर। तो श्री चैतन्य चरितामृत में रामन राय और स्वरूप दामोदर ये श्री चैतन्य महाप्रभु को सुझाव देते हैं, क्योंकि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करके आए थे और उनके साथ काला कृष्णदास गए थे। काला कृष्णदास जो है वो तांत्रिकों के चक्कर में आ गए और अवैध संबंध स्थापित करने का वहां प्रयास किया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी रक्षा की थी और उनको पकड़ के लेके आए, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। चैतन्य महाप्रभु वापस आए और उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया, कह दिया कि आप जाओ, और भक्तों को बोल दिया, सुझाव दिया गया कि उनको नवदीप भेजा जाए ताकि वो शची माता की सेवा कर सके, काला कृष्णदास। तो अब रामन राय स्वरूप दामोदर को ये सुझाव दे रहे हैं, फिर से अब श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे भारतवर्ष की यात्रा करने के लिए निकलना चाहते हैं, अब वृंदावन की यात्रा करना चाहते हैं। तो स्वरूप दामोदर रामन राय कह रहे हैं कि आप अकेले मत जाएं, किसी को साथ लेके जाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं किसी को साथ में नहीं ले जा सकता, अपने पार्षद किसी भी पार्षद को साथ नहीं ले जाऊंगा, आप किसी नए व्यक्ति को दो जिसका मन शांत हो। अगर ऐसा व्यक्ति है कोई जिसका मन शांत है, जिसकी इंद्रियां उत्तेजित नहीं होती हैं, ऐसे नए व्यक्ति को मैं ले जाने के लिए तैयार हूं। तो वो थे बलभद्र भट्टाचार्य। अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वन हूज माइंड इज नॉट पीसफुल इज एजिटेटेड बाय सर्टन ड्राइव्स एस्पेशली सेक डिजायर इवन दो ही बी इन द कंपनी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में रहकर भी अगर उसकी इंद्रियां उत्तेजित हैं तो वो भी काम के वशीभूत हो जाए। सच अ मैन विल बी अ विक्टिम ऑफ वुमेन एंड विल फॉल डाउन इवन इन द कंपनी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ऐसा पुरुष जो है स्त्री के संग में आएगा उसका भी पतन हो जाएगा भले ही वो भगवान के सानिध्य में हो। चैतन्य महाप्रभु के कोई साथ भी जा रहा हो उसका भी पतन हो जाएगा अगर उसकी प्रबल इच्छा है इंद्र तृप्ति करने। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं माय सो स्ट्रांग दैट अनलेस वन इज डिटरमिन्ड नॉट टू फॉल विक्टिम इवन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कैन नॉट गिव प्रोटेक्शन। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि माया इतनी शक्तिशाली है कि जब तक हम स्वयं ना गिरना चाहें तब तक जो है यहां तक कि भगवान भी जो है हमारी रक्षा नहीं कर सकते। अगर जो है जीव की प्रबल इच्छा हो जाए इंद्र तृप्ति करने के लिए द सुप्रीम लॉर्ड एंड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज वॉन्ट टू गिव प्रोटेक्शन। भगवान हमेशा रक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उनके प्रतिनिधि हमेशा रक्षा प्रदान करना चाहते हैं। बट पर्सन मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ देयर पर्सनल कॉन्टैक्ट। लेकिन भक्त को चाहिए कि भगवान और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका आश्रय लेकर उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहे। इफ वन थिंग दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड और रिप्रेजेंटेटिव इज एन ऑर्डिनरी मैन ही विल सर्टेनली फॉल डाउन। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई सोचे भगवान या उनके प्रतिनिधि जो है साधारण व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से ऐसे शिष्य का पतन हो जाएगा, ऐसे भक्त का पतन हो जाएगा। तो सोच के देखिए आप माया कितनी प्रभावशाली है ना। फिर उन लोगों के बारे में क्या कहना जो भक्ति में लगे ही नहीं है, जो बिल्कुल ही भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि भगवान समदर्शी नहीं है, वो पक्षपात करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है ना, और जो है इस प्रकार जो है मेरे बच्चे को मार दिया, अभी तक पिता इसके ये हैं, अभी भी पिता जीवित हैं, पिता के होते हुए बच्चा कैसे मर सकता है, ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। अब सो रहे तो इस प्रकार से कितना दोषारोपण कर रही थी कृत्यद्युति। तो कोई अगर ऑपरेशन करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो चीड़ फाड़ करता है, फिर भी जो पेशेंट क्या करता है बाद में उस डॉक्टर को क्या करता है, चेक देता है, थैंक यू डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा पेट फाड़ा। पेट फाड़ने के लिए आप दोनों उसको पैसे दे रहे हैं, बताइए क्यों? क्योंकि इस पेट फाड़ने से क्या हुआ, आपकी बीमारी दूर हो गई, आपका इलाज हो गया। इसी तरह से भगवान जब असुरों का वध करते हैं, पूतना का वध करते हैं, या तृणावर्त या शक्तासुर या कई असुरों का वध किया भगवान ने वृंदावन में, तो उन सबका उद्धार हो गया। अब बताइए इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कृष्ण की कि पूतना का वध करके भगवान ने पूतना को गोलोक वृंदावन धन में धात्री के रूप में स्थान दे दिया। इससे बड़ी करुणा, इससे बड़ा कंपैशन क्या हो सकता है जो किसी अन्य अवतार में किसी अन्य रूप में ही देखा गया। सूर्पनखा जब भगवान राम के पास आई थी उनको पति के रूप में स्वीकार करने के लिए, भगवान राम ने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत लिया हूं, लक्ष्मण जी के पास जाओ, और लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए और सूर्पनखा का अहंकार भी काट दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण में ये गुण देखे जाते हैं। इस प्रकार की करुणा जो है केवल कृष्ण में देखी जाती है कि किस तरह से कृष्ण जो है उन्होंने पूतना को उद्धार किया, वो पूतना जो कृष्ण को मारने के लिए आई थी गोकुल में। तो ये भगवान की अहित की कृपा है। फिर जो भक्त भगवान के बन जाते हैं उनका उद्धार भगवान क्यों नहीं करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो इसलिए जो कर्म की जो कर्म गहना कर्मणों गति ये लिखा है कि बड़ा गहन है इसको समझना, कर्म का जो ये जो चक्र है बड़ा मुश्किल है इसको समझना। अब विदुर जी को देख लीजिए, विदुर जी यमराज जी थे, एक बार मांडव्य मुनि यानी मांडव मंडूक मुनि भी कहते हैं उनको। तो वो क्या हुआ कि एक बार ان کو غلطی سے پکڑ لیا تھا ایک راجا نے کہ وہ انہوں نے چوری کی ہے کر، چوری انہوں نے نہیں کی تھی اور کسی نے کی تھی، اور وہ پھر بھالے سے جو ہے لینسر سے جو ہے ان کو مارا گیا تھا، مارنے کے لیے مطلب ان کو آگیا دی گئی تھی. تو پھر یہ جو مانڈے ممنی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ یمراج جی کے پاس لے کے آئے جب ان کو، تو یمراج جی ان کو دنڈ دینا چاہ رہے تھے، اور یمراج جی سے انہوں نے کہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے بچپن میں جو ہے ایک چیٹی کو جو ہے تنکے سے مارا تھا، گھاس کے تنکے سے مارا تھا، اس وجہ سے آپ کو یہ دنڈ ملا ہے، اس پرکار اس کارن سے آپ کو راجا نے دھن دیا. تو مانڈو منی نے کہا کہ واسطہ میں اس سمے میں بہت چھوٹا تھا، آٹھ سال کی عمر نہیں تھی میری، اور منو سمیتا کے انوسار آٹھ سال سے کوئی نیچے ہوتا ہے یا اسی سال سے اوپر ہوتا ہے تو اس کو پاپ نہیں لگتا، اگر وشو سے وہ کوئی پاپ جان بوجھ کے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مطلب پاپ لگتا نہیں ہے، آٹھ سال کی عمر کے نیچے پاپ جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. اور اس سمے میری عمر آٹھ سال بھی نہیں تھی. آپ نے جو ہے کیسے جو ہے یہ سزا دے دی ہے، میں آپ کو شاپ دیتا ہوں کہ آپ شودر پریوار میں جنم لو گے، آپ اس پد کے لائق نہیں ہو. تو یمراج جی تک کو جو مرتیو کے ادھیکاری ہیں، سپرینٹینڈنٹ ہیں ڈیتھ کے، ان کو بھی جو ہے یمراج جی کو ودور جی کا روپ دھارن کرنا پڑا، ایک شودر پریوار میں جنم لینا پڑا. بتائیے اسی طرح سے دروپدی جی کا بھی دیکھتے ہیں، دروپدی جی کے پانچ پتی ہوئے اور پچھلے جنم میں جو ہے وہ راجا نل اور دمیانتی کے پتری کے روپ میں جنم لی تھی، اور نل اور دمیانتی کی پتری کے روپ میں نلنی، نلینی نام تھا ان کا، اور ان کی اچھا تھی کہ ایک ایسا پتی ان کو ملے جس کے 14 گن ہوں، 14 کوالٹیز ہوں، اور شیو جی سے پرارتھنا کی. تو شیو جی پرکٹ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسا ویکتی تو کوئی ملے گا نہیں آپ کو کہ ایک ہی ویکتی میں 14 کوالٹیز دیکھی جائیں، ہے نا. تو لیکن جب نلنی نے بہت پرارتھنا کی، بہت پرارتھنا کی، بہت بار بار جو ہے پرارتھنا کی، تو شیو جی نے کہا ٹھیک ہے کہ اگلے جنم میں پھر آپ کے پاس پانچ پتی ہوں گے. تو پانچ پتی ہوں گے سن کر ہی وہ گھبرا گئی کہ یہ کیسے مطلب سمبھو ہو پائے گا. انہوں نے کہا یہ جو پانچ پتی ہوں گے ان میں 14 گن پائے جائیں گے، اور آپ چنتا مت کرو، آپ ہمیشہ پوتر رہیں گے، آپ کبھی دوشت نہیں ہوں گے. تو دروپدی جی کو اس طرح سے شیو جی سے وردان ملا تھا، اور جو پانچ پانڈو تھے ان میں 14 کوالٹیز تھی. یدھیشٹھر مہاراج دھرم کے ادھیکاری ہیں، دھرم کا پورا گیان ہے ان کو، بھیم کے پاس شکتی ہے، ہزاروں ہاتھیوں کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، ارجن کے پاس ویرتا ہے، یدھ بھومی میں دھنر دھاری ہیں، اور نکول سہدیو ان کے ہردے میں وشیش پریم ہے، وشیش سنیہ ہے، وشیش کرونا ہے. تو اس پرکار سے 14 گن ان میں ہیں، ان پانچوں پانڈو میں ہوں گے، اور وہ آپ کے پتی کے روپ میں پرکٹ ہوں گے. تو کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم ایک ایک چرتر کو دیکھیں مہا بھارت میں، ان کے اتیاس دیکھیں، تو انیائے کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، نیائے ہی ہو رہا ہے. یہاں تک بھیشم پتاما جو باڑوں کی شیا میں لیٹے ہوئے ہیں، 100 جنم پہلے انہوں نے ایک سانپ کو جو ہے کانٹوں کی جھاڑی میں پھینک دیا تھا، اس کارن سے جو ہے وہ باڑوں کی شیا میں لیٹے ہوئے ہیں. لیکن بھگوان کیسی ویوستھا کرتے ہیں، بھگوان نے ان کو 100 جنموں تک رو کے رکھا، 100 جنموں کے بعد ان کو ریئیکشن مل رہا ہے بھیشم پتاما کو، تاکہ بھیشم پتاما کا گورو، ان کا یش تینوں لوکوں میں پھیل جائے، اور وہ بھیشم پتاما جو ہے پانڈووں کو اور کوروں کو دھرم اپدیش دے سکے. تو اس پرکار سے بھگوان جو اپنے بھکتوں کا یش بڑھاتے ہیں ان کو کشٹ میں ڈال کے. اب دیکھیے شیواس پنڈت کو دیکھیے کہ شیواس پنڈت جو ہے انہوں نے بھگوان کو بالکل آروپ نہیں لگایا. جب وہ سنکیرتن میں بھاگ لے رہے تھے شیواس پنڈت، تو انہوں نے یہ نہیں آروپ لگایا کہ شری چیتنیہ مہاپرو ہوتے ہوئے کیسے میرا بچہ مر گیا، کیسے میرا لڑکا مر گیا. شیواس پنڈت نے آروپ لگایا نہیں لگایا. یہ شیواس پنڈت جو ہے وہ شری چیتنیہ مہاپرو کے ساتھ وہ نرتیہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں مہاپرو کو پتا چلے گا تو وہ سنکیرتن روک دیں گے، نرتیہ روک دیں گے، کہ میں ان کی سیوا میں بادھا نہیں ڈالنا چاہتا، مطلب ان کے اس آنند میں بادھا نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. شیواس ٹھاکر چپ رہے، شری چیتنیہ مہاپرو سمجھ گئے. وہ لڑکا کیا بولا کہ میں تو اپنے بھاگیہ کے انوسار یہاں جنم لیا ہوں، اب میرا جو بھاگیہ ہے جو میرے پرارتھ میں لکھا ہے، جہاں مجھے جانا ہے میں وہاں جا رہا ہوں، مجھے جانے دیجیے. شری چیتنیہ مہاپرو اس کو جیوت کیا تھا اس لڑکے کو، لیکن شیواس ٹھاکر نے کسی پرکار کا ورودھ نہیں کیا، اور شیواس ٹھاکر نے مہاپرو کو دوش نہیں دیا. اور یہاں دیکھ رہے کرتی دیدی کیا کر رہی ہیں، بھگوان کو دوش دیکھ رہی ہیں.
तो कितना अंतर है देखिए, भक्त और भगवान में कितना अंतर है कि भक्त तो कष्ट चाहता है और भक्त अभक्त जो है कभी कष्ट नहीं चाहता, फिर भी उसको कष्ट मिलता है अपने कर्म के अनुसार। और भक्त जो है कष्ट चाहता है किस लिए, ताकि वो भगवान का स्मरण कर सके। विपदा संता ता शश्वत तत्तत्र जगत गुरु भवत दर्शनम श्यात अपुनर भवत दर्शनम। आप हमें और कष्ट दीजिए, आप हमें और कष्ट दीजिए, क्योंकि आपका अगर दर्शन होगा तो दोबारा भव सागर का दर्शन नहीं होगा। आपका स्मरण करने का मतलब है, आपका दर्शन करने का मतलब है कि दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें और कष्ट दें। कुंती महाराणी की देखिए प्रार्थना कितनी बड़ी प्रार्थना है, इस तरह से कोई प्रार्थना करता है क्या? और यहां तक कि जब कष्ट होता है तो भक्त जो है हमेशा भगवान के पास ही जाता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं भक्तों को कभी भी कि हम जाते हैं, हालांकि हम डेली अनाउंसमेंट करते हैं, डेली स्कोर पढ़ते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर पढ़ते हैं, लेकिन कोई हर्षित होकर नहीं जाता है, हे राधिका रमण, हे कृष्ण बलराम, अब बड़ा अच्छा रहा, आज मुझे बड़ा अच्छा पद प्राप्त हो गया है, बहुत धन प्राप्त हो गया है, धन्यवाद। ऐसा कोई जाता है, बहुत कम होते हैं ऐसे भक्त जो है खुशी के मौके में राधिका रमण जी के पास जाएंगे, कृष्ण बलराम जी के पास जाएंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे और फिर गुणगान करेंगे, बहुत कम दिखाई पड़ता है। अधिकांश क्या होता है कि जो भक्त भी जाते हैं भगवान के पास तो कष्ट की परिस्थिति में जाते हैं कि मैं कष्ट में हूं, मैं नरसों से निवृत्त होना चाहता हूं, ऐसी परिस्थिति से मैं कैसे बच सकता हूं, आप बचाइए हे कृष्ण, हे यादव, हे कृष्ण बलराम, आप बचाइए। लेकिन कुंती महारानी किस लिए जा रही है? कुंती महारानी तो कष्ट से निवारण के लिए नहीं जा रही है, कष्टों से निवृत्त होने के लिए जा रही है। कुंती महारानी जा रही है किस लिए? कष्ट मांगने के लिए। कृष्ण तो द्वारका की तरफ जाने वाले हैं, अब हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुंती महारानी कह रही है कि आप हमें कष्ट दीजिए। इतना कष्ट पा लिया, कष्ट की कमी थी? बताइए, कुंती महारानी को कष्ट की कमी थी? लाक्षाग्रह में उनको जलाने का प्रयास किया गया था पांडवों के साथ, और यहां तक ही जो है जब विवाह भी हुआ था तो फिर वनवास में चले गए थे पांडव के साथ, है ना। और तो और फिर क्या हुआ था, सूर्य की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से उनको बच्चा जो हुआ था विवाह से पहले ही हो गया, तो वो इस बात पे चिंतित हो गई कि समाज कैसे देखेगा इसको, तो बच्चे को जो है गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कितना सारा कष्ट, 12 साल पांडवों के साथ जंगल में बिताया, उसके बाद एक साल अज्ञातवास में बिताया कुंती महारानी ने। ये सब होने के बावजूद भी, ये सब कष्ट उठाने के बावजूद भी कुंती महारानी अब आखिर में क्या कर रही है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, इतने सारे साल कष्ट उठा लिए, अब कुंती महारानी फिर से बोल रही है कि आप हमें कष्ट दीजिए। बताइए, लगातार कोई अगर मतलब शुरू से ही कष्ट उठाता रहे, खासकर जब विवाह होने के बाद, तो कष्ट ही कष्ट शुरू हो गया कुंती महारानी का। और तब से जो है, जब तक कृष्ण द्वारका की तरफ नहीं निकले थे तब तक कुंती महारानी और जो पांडव है कितना कष्ट उन्होंने उठाया, उसके बावजूद भी कुंती महारानी कह रही है कि और हमें कष्ट दीजिए। ये है भक्त, ये भक्त का लक्षण है। इसे प्रभुपाद ने भी कहा कि मेरा जो प्रिविलेज है, कष्ट उठाने का जो प्रिविलेज है, आप मेरे से मत छीनेगा, मुझे कष्ट उठाने दीजिए। तो इस तरह की प्रार्थनाएं केवल भक्त ही कर सकते हैं। बाहर के लोग क्या समझे कि भगवान की कृपा क्या होती है, अयोध्य की कृपा क्या होती है, वो कभी नहीं समझ पाए। इसे जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता है तब तक वो समझ नहीं सकता है कि भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, भक्त्या माम अभी जाना थी यावन या चास्मी तत्वतः। कोई अगर मुझे तत्व से समझना चाहता है, कोई जानना चाहता है कि मैं है वास्तव में हूं कौन, वो केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
सांसारिक जीवन से विभिन्न प्रकार के कष्ट प्राप्त करने के बाद जब लोग चारों ओर से निराश होकर भगवान के पास आते हैं उन कष्ट को निवारण करने के लिए, तब उनके दिमाग में स्वतः ही ये रह जाता है फिर मेरे कष्ट से ही छुटकारा मिल जाए, ये नहीं होता कि मैं भगवान की भक्ति प्राप्त कर लूं या भक्ति संग करूं। तो उस स्थिति में मन को स्थिर कैसे कर पाएंगे?
मन को वो लोग स्थिर कर पाएंगे भक्तों के संग में रहकर, भक्तों से संदेश सुनकर, शास्त्रों का अध्ययन करके और महामंत्र का उच्चारण करके। हरे राम हरे राम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति, इसलिए हरि नाम है। इति षोडश कम नाम नाम कली कलमश नाशनम, तो कली का जो कलमश है, कली में जो इतने सारे मानव देख रहे हैं, इसको दूर करने वाला तो केवल हरि नाम है। तो हरि नाम को जब अपनाते हैं, हरि नाम का आश्रय लेते हैं, तो कष्ट को सहन करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। जितना ध्यानपूर्वक हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तो हम अपने कष्ट भूल जाएंगे। जैसे हम लोग चरणामृत लेते हुए बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विश्वपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। अब कोई बोल सकता है मैं तो इतने साल से चरणामृत ले रहा हूं लेकिन मुझे तो कितनी बार बीमारी लग चुकी है, तो ये तो श्लोक ही गलत है। तो असली बीमारी क्या है? असली बीमारी है भव रोग, यह असली रोग, और इस रोग का इस संसार में कोई इलाज नहीं है। तो चरणामृत का पान करने से हमें असली रोग से छुटकारा मिलेगा, वह है भव रोग से छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग जब भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो हमारे ये कृपा मिलती है, हमें क्षमता प्राप्त होती है, हम इस इन कष्टों को सहन कर पाते हैं। हरे कृष्ण। एक प्रश्न,
हरे कृष्ण। प्रभु जी, यदि अपने को कोई मतलब स्वयं को कोई कष्ट हो तो लेकिन अपने परिजन अपने मित्रगण वो अपन तो उस स्वयं के कष्ट को वहन कर लेते हैं, उसमें खुश रह लेते हैं, सुख रह लेते हैं, लेकिन अपना कष्ट जो दूसरों को दिखता है वो अपने कारण दुखी हो रहे हैं, तो उसके लिए
जब हम दूसरों के कष्टों को देखते हैं कि लोग दुखी हैं, अपने दुखी हमें चिंता नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। क्योंकि वैष्णव परा दुखा दुखी, वैष्णव तो दूसरों के दुख को दुखी होता है, ये तो भक्त का लक्षण है। अब दुखी होना पर्याप्त नहीं है, उस दुख को दूर भी हमें करना पड़ेगा उनको कृष्ण भावना की इस अनमोल भेंट को देकर, उनको भी भक्ति में लगाकर। और कोई उपाय नहीं है इस कष्ट से छुटकारा पाने का। तो इस तरह से हम दूसरों के दुख को दूर करना चाहते हैं तो उनको भी भक्ति में लगाएं, यही उपाय है इसका। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।